यह प्रवचन परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया श्री राधा पाठशाला टेम्पल नई दिल्ली चैतन्य चैतामृत मध्य लीला अध्याय 22 प्यार संख्या 128 दिनांक 24/11/2013 हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण।
स्टैंड नहीं चाहिए? नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए।
जुकाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपको चैतन्य चैतन्य का एक प्रसिद्ध श्लोक पढ़कर सुनाएंगे। चैतन्य चैतन्य में चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन और लीलाओं का और शिक्षा का वर्णन प्राप्त होता है। आपको सुनाई दे रहा है? थी पीछे सुनाई दे रहा है? आप में से कितने भक्तों ने चैतन्य चैतन्य पढ़ी है? चैतन्य चैतन्यता हिंदी भाषा में भी प्रकाशित हो गई है, विश्व की 70 से अधिक भाषाओं में। तो चैतन्य महाप्रभु जी कौन है? स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण है आर्य। यही राधा कृष्ण प्रकट हुए के रूप में चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा जो आप भगवद गीता में प्राप्त करते हो उसमें कोई अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं और प्रकट हुए थे भक्त के रूप में हमें शिक्षा देने के लिए किस प्रकार भक्ति की विधि का पालन हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन दो भाई थे जिनका जन्म हुआ था ब्राह्मण कुल में और जिनकी बचपन से ही बड़ी गहरी रुचि थी कृष्ण भक्ति में। पर किसी कारण उन्हें जबरदस्ती उस समय के जो नवाब थे जिनका नाम क्या था? हुसैन शाह। उनके राज्य का कार्य की देखभाल करनी पड़ी। बड़ा ऊंचा पद था समाज में उनका, लगभग प्रधानमंत्री जैसे। और आज से 500 साल पूर्व बंगाल का जो राजा था भारत का सबसे धनी स्थान माना जाता था, एक रूप से कह सकते विश्व का। और उस राजधानी का वो दोनों भाई शासन कर रहे कार्य कर रहे थे। उनकी रुचि दिन रात थी भक्ति के विषय में। और रूपक गोस्वामी की इच्छा थी कि वो कार्य छोड़कर आ जाए महाप्रभु के साथ यात्रा करें, उनसे शिक्षा लें। तो महाप्रभु ने उन्हें कहा, नहीं अभी थोड़ी देर और ठहरो। उन्होंने एक उदाहरण दिया जिस प्रकार एक विवाहित स्त्री का प्रेमी होता है तो घर में तो बड़े ध्यान से सेवा करती है पर मन में क्या सोचती है, मैं कब अपने प्रेमी को मिलूंगी। तो ये उदाहरण दिया महाप्रभु ने ये बताने के लिए, बाहर से नौकरी करो पर अंदर से क्या कृष्ण का स्मरण करो, यही सोचो कि आप भगवान की सेवा कैसे कर सकते हो। तो ये उपदेश हम सबके लिए है। और प्रभुपाद जी इस उदाहरण का उपयोग करते हैं भगवद्गीता की भूमिका में कि भौतिक दृष्टि से आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, नौकरी कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, घर की देखभाल कर रहे हो, पर अंदर से आपका भाव क्या होना चाहिए? कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा, ये भाव होना चाहिए। और ये भाव रहेगा तो आप भक्ति में रहोगे। खैर थोड़े समय बाद रूप गोस्वामी ने सरकारी नौकरी त्यागी और इसके बाद उनके भाई सनातन ने भी, तो इन दोनों भाइयों को महाप्रभु ने बड़ी गहरी शिक्षा दी। और इस चेतन चतुर्मृत में भक्ति की विधियों का वर्णन प्राप्त होता है। भक्ति की अनेक विधियों का वर्णन किया चेतन महाप्रभु जी ने। आप इस विषय का ज्ञान भगवद्गीता के ने चेतन चतुर्मृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय में प्राप्त कर सकते हो। आप सबसे निवेदन है कि आप पढ़िए, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है। पर चैतन्य महाप्रभु ने अनेक विधियों का वर्णन किया, ग्रंथ में कहा इन सब में ये जो पांच हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज हम संक्षेप में इनका वर्णन करेंगे। ये श्लोक बोर्ड में लिखा हुआ है, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास मूर्तिदास सुधाया सेवना। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धाया सेवना। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धाया सेवना। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धाया सेवना।
साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण
अनुवाद। आप में से कोई उच्चारण करना चाहते हैं? ये श्लोक आप सबको कंठस्थ कर लेना चाहिए। अगर आपके पास काफी कंठस्थ है तो आप श्लोक लिख सकते हो। अगले हफ्ते जब आप लौटोगे आपकी परीक्षा में ही है। अनुवाद
मनुष्य को चाहिए कि वह भक्तों की संगति करे, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे, श्रीमद् भागवत सुने, मथुरा में बात करे तथा
अगला श्लोक का अनुवाद पढ़ दो। अगले श्लोक का
अगले श्लोक का अनुवाद है, भक्ति के पांच अंग सर्व अंगों में श्रेष्ठ है, यदि इन पांचों को थोड़ा सा भी संपन्न किया जाए तो कृष्ण प्रेम जागृत हो रहा है।
तो कृष्ण प्रेम जागृत करना जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए, सच झूठ। और कृष्ण प्रेम कैसे जागृत किया जाए, ये उपदेश हमें ग्रंथ में प्राप्त होता है। चाहे आप भागवतम पढ़ो या भगवद्गीता पढ़ो या चैतन्य चरितमृता पढ़ो, इन ग्रंथों में आपको क्या उपदेश दिया जा रहा है, कृष्ण प्रेम कैसे जागृत किया जाए। तो इस विषय में सबसे पहले महाप्रभु क्या कह रहे हैं, साधु। तो इस विषय का वर्णन शास्त्र के अनेक श्लोकों में है, साधु संगत। संगत का प्रभाव पड़ता है आपके आचरण के ऊपर, सच झूठ। और साधु संगत में रहोगे तो अपने जीवन को सुधार सकोगे। चाहे आप भागवतम पढ़ो, वहाँ भी ये लिखा है, भागवतम में आप पढ़ते हो भगवान कपिल देव का वर्तमान उनकी माता देवाहूति के साथ। देवाहूति को पता था कि उनका बेटा भगवान के अवतार है, तो माता ने बेटे से पूछा था, क्या पूछा, ये बताओ किस प्रकार मैं भौतिक संघर्ष से छुटकारा प्राप्त कर सकती हूँ। बेटे ने कहा, भक्ति के माध्यम से। भक्ति एक माध्यम है जिसके द्वारा आप जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। हरे बाप बच्चों को इसको चुप करो। और आगे माँ ने पूछा, ये भक्ति कैसे प्राप्त होगी, और बेटे ने कहा, साधु संगत के द्वारा। तो साधु संगत से आध्यात्मिक भाव बढ़ता है, और साथ में चैतन्य चतुर्मिता में ये भी कहा गया है, असंगत संगत असद साधु संगत, जो भौतिकवादी हैं उनकी संगत से बचो, उतना ही रखो जितना कि आवश्यक है। श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंध में आपको जज भारत और महाराज रघुगणा की कथा प्राप्त होती है। महाराज रघुगणा धार्मिक भाव के राजा थे, और एक समय वो जा रहे थे आध्यात्मिक संदेश सुनने के लिए। उनको तेजी से जाना था, क्योंकि जो सेवक थे उन्होंने एक जज भारत नाम के व्यक्ति जो वहाँ खड़ा था उसे कहा, राजा की पलकी को उठाने में सहयोग दो। जज भारत पूर्व जन्म में भारत महाराज थे, पूर्व जन्म एक हिरण बने थे, उससे पहले भारत महाराज थे, और थे वो भगवान ऋषभदेव के बेटे। भगवान ऋषभदेव भी भगवान के अवतार हैं, जिनके 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भारत। उनका शासन इतना सुंदर था, पृथ्वी में हर व्यक्ति इतना संतुष्ट था कि पूरी पृथ्वी का नाम क्या हो गया, भारतवर्ष। आज जब हम भारतवर्ष की चर्चा करते हैं तो सिर्फ जो आज का भारत है वो समझा जाता है, पर एक समय पूरे प्लैनेट का, पूरे पृथ्वी का नाम था भारतवर्ष। तो भारत महाराज का शासन था, फिर उन्हें सब कुछ त्याग कर जंगल में गए, जहाँ की उनका आकर्षण हो गया एक हिरण के प्रति। थोड़े समय के लिए उन्हें हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा, और फिर उन्होंने जन्म लिया एक ब्राह्मण कुल में, जिनमें इनका नाम था जज भारत। तो जज भारत को से निवेदन किया गया था, राजा को देर हो रही है, उनकी पंख उठाने में सहयोग दो। जज भारत ने सहयोग दिया, पर जज भारत और दूसरे सेवकों में अंतर यह था कि जज भारत पैरों को पृथ्वी रखने पर रखने से पहले ये देखते थे कि नीचे कोई चींटी वगैरह तो नहीं है, जिसके कारण पंख तेजी से जाने की बजाय धीमे जाने लगी। राजा को गुस्सा आया, राजा ने डांटा, सेवकों ने कहा, हमारा दोष नहीं है, ये जो नया व्यक्ति हमने जोड़ा है उसके कारण पलकी आपकी धीमे जा रही है, क्योंकि जब भारत पैर को पृथ्वी पर रखने से पहले ये देखते थे आगे 3 फुट तक कोई चीटी वगैरह तो नहीं है, और दूसरे सेवक उनको कोई चिंता नहीं थी। तो राजा ने डांटा जज भारत को, शुरू में तो जज भारत ने सह लिया कि बच्चा ही बच्चों को तो जज भारत ने पहले से ही डांट सह ली। फिर जब जज भारत बोले तो महाराज भोगना समझ पाए कि व्यक्ति गूंगा और बहरा नहीं है, तो ये तो आत्मज्ञानी व्यक्ति है। उन्होंने कहा मैं इन्हें तो अपराध कर लिया है, तो एकदम अपनी पलकी से नीचे उतरे। उन्होंने कहा कि मुझे इंद्र के थंडरबोल्ट का भय नहीं है, तो मुझे किसका भय है? वैष्णव अपराध। आध्यात्मिक जीवन में हमें ध्यान वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। इस विषय में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्ति का जो सुंदर बगीचा है जो बनता है हरिनाम के उच्चारण से, वो बिगड़ सकता है वैष्णव अपराध के द्वारा। दूसरे शब्दों में, अगर एक सुंदर बगीचे में आप किसी पागल हाथी को आने दो तो पूरा बगीचा नष्ट हो जाएगा। वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। तो फिर महाराज भोगना जद भारत के शरणागत हुए, उनसे निवेदन किया कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए। जब हम किसी संत को मिलते हैं तो हमारा भाव होना चाहिए कि हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें, ये नहीं कि हम आशीर्वाद प्राप्त करें धन कमाने के लिए या सुंदर पत्नी प्राप्त करने के लिए। ये इच्छा होनी चाहिए कि हमें आध्यात्मिक उपदेश प्राप्त हो जिसके सहयोग से आध्यात्मिक जागृति बढ़े। तो जज भारत ने बड़ा उपदेश दिया, और उपदेश देते जज भारत ने साधु संगत पर भी बल दिया। जज भारत ने कहा साधु की संगत में जब रहते हो तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, और इस आध्यात्मिक ज्ञान के सहयोग से अज्ञानता दूर होती है। तो साधु संगत प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ये रविवार के कार्यक्रम की स्थापना की, इसका उनका प्यारा केंद्र खुला था न्यूयॉर्क में, और प्रभुपाद जी ने रविवार के प्रोग्राम की स्थापना की, और विश्व के हर कोने में हर मंदिर में ये रविवार का कार्यक्रम किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि आप जैसे भक्त जो कि घर में रहते हो, नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, सेवा करते हो, उन्हें मौका मिले मंदिर में आकर भक्तों की संगत का प्राप्त करने के लिए। तो हम सबका उद्देश्य ऐसे होना चाहिए कि हम साधु संगत में जितना हो सके उतने रहें, खास करके अगर आपको संगत मिले उनकी जो भक्ति में आपसे ज़्यादा योग्यता रखते हैं। सत्संग त्याग है वैष्णवाचार, तो शास्त्र में यह कहा गया है और भक्तों की संगत उतना ही प्राप्त करो जितना कि आवश्यक हो, पर उनसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि समाज की स्थिति ऐसी है कि भक्तों की संगत में हमें रहना ही पड़ता है। तो उतना रहो जितना कि आवश्यक हो। अगर आपसे कहा जाए भक्तों की संगत में नहीं रहना, आप अगर स्वामी जी हम नौकरी कहाँ करें, पढ़ाई कहाँ करें, तो वास्तविकता में देखा जाए रहना पड़ेगा। उतना रहो जितना आवश्यक है उससे अधिक नहीं, और भक्तों की संगत में रहोगे तो आपको ये ज्ञान मिलेगा, ज्ञान जिसके सहयोग से जीवन को आप सफल बना सकते हो। आगे उन्होंने कहा भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण, तो ये है शास्त्र का निर्णय कि भगवत प्राप्ति के लिए हमें भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए। ये है शास्त्र का निर्णय। तो ये निर्णय है, ये भाव बाइबल में भी प्रस्तुत किया गया है। बाइबल में भी कहा गया है Thou shall always chant the names of the Lord. तुम सदा भगवान के नामों को उच्चारण करोगे. तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करो. जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से नरकों के वर्णन का वर्णन सुना भगवतम के पांचवें स्कंद में, भगवतम के पांचवें स्कंद में हेलिश प्लैनेट अलग प्रकार के नरकों का वर्णन है. उसमें ये बताया जाता है किस प्रकार का अपराध का क्या परिणाम होगा, बड़े स्पष्ट रूप से. तो परीक्षित महान एक रूप से घबरा गए ये सब सुनकर. और जो भगवान के भक्त हैं वो सदा प्रजा को सुखी देखना चाहते हैं, तो वो ये जानते हैं कि असली सुख चाहिए तो ये नहीं कि आपको मोटर मिल जाए या बैंक बैलेंस हो जाए. असली सुख केवल जब प्राप्त होगा अगर आप क्या भगवान के शरणागत हो जाओ. ये जो भौतिक सुख जिसके पीछे हम दौड़ते हैं वो असली सुख नहीं, असली आनंद है जब आप भगवान की सेवा में जुड़ते हो. तो परीक्षित महाराज ने पूछा कैसे लोगों का उद्धार हो सकता है, और इस विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि प्राचीन पुराणों में एक कथा हम पढ़ते हैं और उन्होंने आजीवन की कथा का वर्णन किया. ये कथा आप श्रीमद्भागवतम के छठे स्कंद में प्राप्त करते हो. तो इस कथा में आप देखते हो कि आजीवन का जन्म हुआ था एक ब्राह्मण खानदान में, जहाँ की बचपन से ही उन्हें भक्ति की विधियों का ज्ञान था, मंत्रों का उच्चारण करते थे, ठाकुर जी की पूजा करते थे, पत्नी थी, बच्चे थे, माता पिता थे, भाई बहन थे. और एक दिन आजमिल जंगल में गए थे भगवान की पूजा के लिए फूल लाने के लिए, जबकि लौटते समय उन्होंने एक शराबी औरत को वैश्य को देखा अपने प्रेमी के साथ. और ये घटना देखकर इसके प्रति बड़े आकर्षित हो गए, इसका स्मरण आरंभ कर दिया. और थोड़े समय के बाद पहले उस वैश्य को नौकरानी के रूप में रखा और बाद में पत्नी के रूप में, जिनके द्वारा उनके 10 बेटे हुए बच्चे थे, जिनमें सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था. तो प्राचीन समय में रिवाज था कि बच्चों को भगवान के नाम दिए जाते थे, और ये रिवाज कृष्णों में भी है, मुसलमानों में भी है. तो नारायण के प्रति पिता का बड़ा गहरा आकर्षण था, और इतना गहरा आकर्षण कि एक पल के लिए भी अगर बेटा नजरों से दूर होता था तो घबरा जाते थे. दिन में कई बार नारायण शब्द का उच्चारण कर लेते, नारायण आओ बैठो, नारायण खाओ, नारायण सो. और इस वैश्य को संतुष्ट रखने के लिए हर प्रकार का गलत काम करना पड़ा. थोड़ी वो जो संपत्ति थी आजमीन की वो समाप्त हो गई जल्दी, और फिर उन्हें अनेक प्रकार के गलत कार्य में जुड़ना पड़ा पत्नी को संतुष्ट करने के लिए, जिसके कारण उनका पाप का बोझा तेजी से बढ़ रहा था. पर और यामराज जी ने देखा कि पाप इतना बढ़ गया है, तो उन्होंने यामदूतों को भेजा तीन. क्यों? क्योंकि हम अगर भगवान की सेवा भी करना चाहें तो उसके तीन माध्यम होते हैं. क्या है? ध्येय, मन, वाणी. और इन तीन साधनों से आप भगवान की सेवा कर सकते हो, और इन तीन साधनों से भगवान को भूल भी सकते हो. और जब याम आजमी ने अपने इन यामदूतों को देखा तो देखकर इतना घबरा गए कि उन्होंने जोर से नारायण शब्दों को कहा जोर से, और जैसे ही नारायण शब्द को पुकारा भगवान विष्णु के प्रतिनिधि वहां पहुंच गए। हमारे गुरु जी उदाहरण देते हैं इस विषय में कि जैसे आप शहरों में देखते हो पुलिस की गाड़ियां घूमते रहती हैं, जैसे कोई दुर्घटना हो तो आप टेलीफोन करो 100 पुलिस एकदम पहुंच जाती है। तो इसी प्रकार भगवान विष्णु के दूत भी हर जगह यात्रा करते रहते हैं, जहां भी उन्हें नारायण का नाम सुनने में आता है तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। जैसे आज उसने नारायण शब्द को पुकारा तुरंत ही वहां कौन पहुंच गए, विष्णु। तो इस कथा में आप ये पढ़ते हो सुनते हो कि भगवान के नामों के उच्चारण से कैसे आजीवन की सुरक्षा हुई, और क्योंकि उन्होंने पहले ही भक्ति की थी जिसके कारण भगवान ने उनकी सुरक्षा की। पर वो एक रूप से भगवान के नामों का भी उच्चारण वगैरह कर रहे थे। तो कलियुग में दोष ही दोष है, जैसे श्रीकृष्ण गोस्वामी कहते हैं कले दोषे निर राजा, हे राजा कलियुग में दोष ही दोष है, प्रेम गुण है। वो क्या है? कृष्णा कृष्णा देव कृष्ण से मुक्त संघर्ष कृष्णा का नाम। तो ये है शास्त्रों का निर्णय, हरिनाम 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 एव केवलम कलो न सेवन 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 का, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है अगर हम भगवत प्रेम अनुकूल करना चाहें। तो इस हरि नाम का हमें अपनाना चाहिए। भगवान ने जीभ दी है और दो कान दिए हैं, इनका असली उद्देश्य क्या है? जीभ द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करना, कानों द्वारा भगवान के नामों को सुनना। तो पवित्र नामों का उच्चारण ये शास्त्रों का निर्णय है। श्रीमता स्वागत कृष्ण पुण्य श्रवण कृष्ण, आप भगवान के पवित्र नामों को सुनोगे तो क्या लाभ होगा? जो आपके हृदय में मैल है काम क्रोध लोभ मन्मत्सर्य के रूप में ये निकलने लगेगी। भगवान के नामों में भगवान में अंतर है? नामचिंतामणि कृष्ण, ये जो भगवान के नाम है चिंतामणि परत पत्थर जैसे हैं, ज्ञान से अज्ञान से जो भी नामों का उच्चारण करेगा वो उसका लाभ उठाएगा। तो हम सब का प्रयास रहना चाहिए भगवान के पवित्र नामों का क्या करें, उच्चारण करें। तो आप ऐसे कितने भक्त सभा में रोज 16 माला का जाप करते हो? ये भक्तों की सभा है। कितने भक्त हो जो 16 माला का जाप नहीं करते? कितने भक्त जो कि एक दो दो तीन माला करते हो पर 16 से कम, और कितने हो जो कि बिल्कुल जाप नहीं करते? तो ये श्लोक सुनकर आप सबको ये निर्णय कर लेना चाहिए क्या कि हमें जाप करना चाहिए। ये है असली धन, और आप प्रयास करोगे तो भगवान आपको शक्ति देंगे उन्हें समझने के लिए। कुछ दिन पहले ही कार्तिक का महीना समाप्त हुआ है, और जैसे आप जानते हो सब महीना में कार्तिक का महीना सबसे पवित्र माना जाता है, और कार्तिक के महीने में हमारे भक्त प्रयास करते हैं जाप बढ़ाने के लिए सेवा बढ़ाने के लिए, और कार्तिक के महीने में हम भगवान की दामोदर लीला का वर्णन करते हैं दामोदर अष्टका के उच्चारण के द्वारा, हाँ, और दिया भी अर्पण करते हैं। तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं जिनमें एक प्रसिद्ध लीला है दामोदर लीला, जो कि बीती थी दीपावली वाले शुभ अवसर पर। तो दामोदर लीला में आप देखते हो कि यशोदा माता प्रयास कर रही थी अपने बेटे को बांधने के लिए, और पहले तो उन्होंने एक रस्सी से प्रयास किया। ये रस्सी थी जो उन्होंने रखी थी घर में गायों को बांधने के लिए। नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी। कितनी?
9 लाख।
आज के वातावरण में आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये 9 लाख गायें में 9 गायें बड़ी प्रसिद्ध थी, जिनसे सुगंधित दूध आता था अलग अलग फ्लेवर का। अभी अगर आपने दूध में कुछ फ्लेवर डालना है, अलग फ्लेवर डालोगे तो ही वो बनेगा। तो ये 9 गायों से जो दूध निकलता था बिल्कुल सुगंधित दूध, अलग अलग सुगंध का। पहले यशोदा माता ने एक रस्सी से प्रयास किया, बेटे को बात नहीं हुई, सफल नहीं हुई। क्योंकि घर में जितनी रस्सियां थी उन सब को जोड़ लिया, फिर भी सफल नहीं हुई। फिर जो पड़ोस की गोपियां थी, जब उन्होंने देखा कि यशोदा माँ बेटे को बांधने की प्रयास कर रही है, दौड़कर वो भी अपने घरों से रस्सी ले आए। तो अगर इन सब रस्सियों को जोड़ा जाए और मापा जाए तो आप देखोगे इन रस्सियों की लंबाई कई किलोमीटर लंबी हो गई थी। और जब ही जब वो प्रयास कर रही थी बांधने को, नहीं बांध पाए। और ये नहीं कि भगवान ने अपने आप को फुलाते गए या मोटे होने गए, वो इसलिए वो बांध नहीं पाए। भगवान वैसे के वैसे ही थे। ये नहीं कि उनका पेट बढ़ते गया और इसलिए रस्सियां छोटी निकल गई थी। भगवान वैसे के वैसे ही थे, जब ये रस्सियां छोटी निकल गई थी। फिर भगवान ने देखा मेरी माता इतनी प्रयास कर रही है, पसीना निकल रहा था उनके चेहरे से, दूसरी गोपियां हंस रही थी, कह रही थी क्या देखो कितनी निकल इतनी निकमी है, छोटे बेटे को बांध नहीं सके। फिर भगवान ने बांधने दिया। तो हमारे आचार्यों ने ये शिक्षा दी है कि जो 2 उंगलियां हैं उनका संदेश क्या, एक है हमें प्रयास करोगे, प्रयास करोगे तो भगवान को समझ पाओगे। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, गॉड हैज दोज हू हैव देमसेल्व्स। भगवान किनका सहयोग करते हैं, तो स्वयं प्रयास कर रहे हैं। तो और दूसरी उंगली का भाव क्या है, अगर प्रयास करोगे तो गुरु भगवान साधुओं की कृपा से भगवान को समझ सकोगे। तो अगर आप प्रयास करोगे, हरि नाम का उच्चारण करोगे, फिर भगवान को भी समझ पाओगे। तो हम सबका ये निर्णय होना चाहिए कि हम सबका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि हम बिना नियमित रूप से भगवान के नामों का उच्चारण करें। ठाकुर भक्तिवेदी जी कहते हैं, चाहे आप गृहस्थ आश्रम हो या वानप्रस्थ या संन्यास, हरि नाम का उच्चारण जरूर करो। ये नहीं हम गृहस्थ आश्रम में हैं हमें छूट मिली हुई है, नहीं। ये सब में कई बार हम भारत में सुनते हैं तो कहते हैं हम तो गृहस्थ आश्रम में हमें छूट मिली हुई है। भगवान जो आदेश दे रहे हैं पूरे मानव समाज में है, तो हमें हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। आगे ठाकुर भक्तिवेदी जी कहते हैं, सुख में या दुख में दोनों ही परिस्थितियों में क्या करो, हरि नाम का उच्चारण करो। वो एक और प्रार्थना जीव जागरण में कहते हैं, भीख मांगो तो क्या चीज की भीख मांगो, हरि नाम की भीख मांगो। अक्सर हम मांगते हैं कोई सौदा मिल जाए, कोई सुविधा प्राप्त हो जाए, तो हमें किसी चीज की भीख मांगनी चाहिए, हरि नाम की भीख मांगनी चाहिए। और हरि नाम की भीख आप कैसे मांगोगे, हरि नाम का उच्चारण करके। जितने प्रेम से साधन से हरि नाम का उच्चारण करोगे उतनी ज्यादा शक्ति प्राप्त होगी हरि नाम का उच्चारण करने के लिए। तो ये है शास्त्रों का निर्णय, ये नहीं कि हरि नाम की महिमा का प्रचार पापा जी ने अपने मन से किया, ये है शास्त्रों का निर्णय। चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रकट हुए थे ये हरि नाम का प्रचार बढ़ाने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी क्या क्या पृथ्वी आदि जगह नगर निगम, पृथ्वी में जितने नगर हैं गांव हैं सब जगह क्या होगा, ये हरि नाम पहुंचेगा। आज आपको खुशी होगी जानकर कि विश्व के हर कोने में हजारों की संख्या में लोग ये हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के प्रभुपाद जी की पवित्रता से प्रयास से आज 700 से अधिक केंद्र हैं इसको उनके, इसके अलावा अनेक प्रचार केंद्र हैं और विश्व के हर कोने में लोग हरि नाम को अपना रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ये उत्सव था वृंदावन में, सारे विश्व से भक्त आए थे चाइना से हर देश से। तो ये हरि नाम जो है पूरे मानव समाज के लिए है, ये नहीं कि केवल हिंदुओं के लिए या भारतीयों के लिए, ये हरि नाम है पूरे मानव समाज के लिए। वो हरि नाम के उच्चारण से भगवान से प्रार्थना करे क्या हमें सेवा दीजिए सेवा दीजिए सेवा दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने अनेक अंगों का वर्णन किया विधियों का, पर इन सब का वर्णन करने के पश्चात उन्होंने इन पांच अंगों को स्थापित किया कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे तिलक लगाना भी महत्वपूर्ण है, चंद्र मित्र लेना भी महत्वपूर्ण है, भगवान के सामने प्रणाम करना भी महत्वपूर्ण है, ये एक अंग है, पर इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है ये पांच अंग जिनका हम वर्णन कर रहे हैं। तो साधु संगत और दूसरा क्या था, हरि नाम का उच्चारण, आगे उन्होंने क्या था भागवत का अभिहन श्रीमद भागवतम, इसमें सबसे उत्तम ज्ञान है। नारद मुनि व्यासदेव ने सारे वैदिक शास्त्रों का वर्णन किया था, उनके सार को प्रस्तुत किया था वेदांत सूत्र में, तो जब भी उनके मन में बेचैनी थी कि कुछ कमी रह गई है मेरे कार्य में, जैसे सोच रहे थे सरस्वती नदी के तट पर वहां पहुंच गए कौन, नारद मुनि जी, जिन्होंने कहा कि तुमने केवल शुद्ध भक्ति के ऊपर बल नहीं दिया, फिर उन्होंने हमें श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। तो श्रीमद् भागवत को पढ़िए, साथ में गीता को भी पढ़िए और गीता भागवत को ध्यान से सुनिए। भागवत में है क्या, शुद्ध भक्ति का ज्ञान, वो अनेक भक्तों की लीलाएं हैं, वो भगवान की लीलाओं का वर्णन है, भक्तों की कथा है, पर निर्णय क्या है, सर्वे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अथो शुद्ध, शुद्ध धर्म का वर्णन है। तो ये श्रीमद् भागवतम को पढ़िए, आप में से कितने भक्तों के पास श्रीमद् भागवतम का सेट है, तो श्रीमद् भागवतम जैसे आप जानते हो इसमें 12 स्कंध हैं, 18 श्लोक हैं, और भक्तियों में बुक ट्रस्ट ने पूरे भागवतम को प्रकाशित किया है। और आज आपको खुशी होगी जानकर यही श्रीमद् भागवतम का अनुवाद 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हो गया। आज पहली बार इतिहास में आप श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हो चाइनीज भाषा में, आज पहली बार इतिहास में बड़ी बड़ी किताब, आज पहली बार इतिहास में आप श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हो जर्मन भाषा में, विश्व की हर प्रसिद्ध भाषा में सारे 12 स्कंद प्रकाशित हो गए हैं। और ये श्रीमद् भागवतम हिंदी भाषा में भी प्रकाशित हो गई है। तो आप सबसे निवेदन है, क्योंकि जब मैंने पहले पूछा मैंने कितने भक्त सोना वाला करते हैं, लगभग लगभग सबने हाथ उठाया था, तो आप सब भागवतम को भी पढ़िए। आज तो भागवतम के सेट को भी अपने घर में रखे और एक श्लोक भी रोज पढ़ोगे तो इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब तैयार हो पढ़ने को रोज? आप इसे कितने भक्त जो भगवत गीता को रोज पढ़ते हो और कितने भक्त जो कि श्रीमद् भागवतम रोज पढ़ते हो? अगर आप सब पढ़ो रोज इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भागवत में कहा गया है नास्ता प्रेषो बदेश नित्य भागवत से होया भागवती श्लोक है भागवती नास्ते। अगर हम ध्यान से भागवतम सुनेंगे तो हृदय में जो मैल है ये दूर हो जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जी का तीसरा आदेश क्या था? भागवतम पढ़ो। चौथा क्या था? मथुरा में वास करो। आप सब मथुरा जाओगे दिल्ली छोड़कर? आप सब दिल्ली छोड़कर मथुरा चले गए तो दिल्ली में प्रचार कौन करेगा? दिल्ली में भगवान की सेवा कौन करेगा? तो जहां हो वहीं रहो पर अपने घर को घर का वातावरण ऐसे रखो कि वृंदावन बन जाए। तो आप जी एक समय मूर्ति स्थापना कर रहे थे तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जहां भी भगवान का गुणगान हो रहा है वो स्थान क्या बन जाता है? वृंदावन। तो इसका असली संदेश यह है कि जहां भी हो वहां रहो पर घर में आध्यात्मिक वातावरण रखो। घर में एक मंदिर बना लो, सब मंदिर बनाओ, घर में मंगल आरती करो। अगर आप मंदिर नहीं आ सकते मंगल आरती के लिए तो घर में मंगल आरती कर सकते हो। घर में मंगल आरती करो। तो जहाँ भी हो वहाँ रहो पर जो घर का वातावरण है वो क्या? कृष्ण भक्ति का रखो। और पांचवा आदेश क्या था? पांचवा आदेश भूल गए? भगवान के आचार्य विग्रह की उपासना करो श्रद्धा के साथ और प्रेम के साथ। जिस प्रकार भगवान अवतारित होते हैं अपने नामों के माध्यम से उसी प्रकार वो आकर्षित होते हैं अपने आचार्य विग्रह के रूप में। और इस आचार्य विग्रह और भगवान में अंतर है? है? कम बुद्धि के व्यक्ति कहते हैं ये मूर्ख वैष्णव पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, ये तो पत्थर की मूर्ति है। भाई वो ये भूल जाते हैं कि भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। भगवान अपने आप को हरि नाम के रूप में प्रकट करते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान में कुछ अंतर नहीं, भगवत गीता के संदेश में भगवान में कुछ अंतर नहीं, भगवान उनके आचार्य विग्रह में भी कोई अंतर नहीं। तो यहाँ ये केवल ये नहीं कह रहे चैतन्य महाप्रभु भगवान के आचार्य विग्रह की पूजा करो। चैतन्य महाप्रभु कह रहे श्रद्धा और आदर के साथ, पूरे आदर के साथ, पूरे श्रद्धा से, ये नहीं कि ये मूर्ति है, भगवान स्वयं इस आचार्य विग्रह में प्रकट होते हैं। एक कथा पढ़ते हो चैतन्य चरितमृत में मालनपुरी की, बहुत ही ऊंची कुटी के भक्त थे जिन्हें भगवान ने सपने में आदेश दिया था कि मेरी मूर्ति दबी हुई है इस स्थान में, मुझे वहाँ गर्मी लग रही है, वहाँ से खोज निकालो और स्थापना करो। मालनपुरी में स्थापना की, कई सालों में उनकी पूजा की। फिर भगवान ने सपने में कहा, आदेश दिया उसे, मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, मेरे चंदन लेके आओ। तो चंदन लेने वो गए कहाँ? उड़ीसा। और वहाँ पहुँचे एक शहर में जिसका नाम है रमना। वहाँ एक बड़ा प्राचीन मंदिर है राधा गोपीनाथ का, और कहा जाता है ये जो आचार्य विग्रह हैं वहाँ उनको भगवान ने स्वयं बनाया था कि वो रामचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए थे। तो इस मंदिर में जो खीर बनाई जाती है भगवान के लिए बड़ी मीठी है, उसका नाम है अमृत केली। कहते हैं ये खीर स्वर्ग में बनकर आई है। इतना अच्छा थे। तो महानंद पुरी की इच्छा थी कि अगर मुझे ये खीर चखने के लिए मिल जाए तो मैं लौटकर अपने गोपाल के लिए भी इसी प्रकार की खीर बनाऊंगा। पर ये भावना प्रकट हुई जब भगवान को भोग लग रहा था। नियम यह है जब भोग लग रहा है, जब भोग तैयार कर रहे हो तो हमारा भाव होना चाहिए ये भोग बन रहा है किसके लिए, भगवान के लिए, ये नहीं हमारे जीव के चस्के के लिए। तो महानंद पूरी शर्मिंदा होकर चले गए वहां से बाजार में भगवान का भजन करने के लिए। तो भगवान ने क्या किया, भगवान अपने भक्त की इच्छा को समझते थे। भगवान ने जो भोग लगा था एक प्याला चुरा कर पर्दे के पीछे छुपा दिया। हम भगवान को भोग लगा दे, भगवान ने खीर के प्याले को पर्दे के पीछे छुपा दिया और पुजारी को आदेश दिया सपने में कि मैंने खीर का प्याला चुरा कर पर्दे के पीछे रखा है, तुम इसे उठाकर कहाँ पहुँचा दो, ले जाओ मानंदपुरी के पास। पुजारी ने जब ये सपना देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ, भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर पर्दे के पीछे रखा है, ये कैसे संभव हो सकता है। क्या जब वो देखा तो आश्चर्य हो गया था। तो भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। जब उस गरीब ब्राह्मण ने कहा गोपाल विघ्न से मेरी इज्जत का प्रश्न है, मेरी समाज में बेइज्जती हो रही है, और आप साक्षी थे कि जब उस धनी व्यक्ति ने यह वचन दिया, भगवान ने कहा तो मैं तो चल नहीं सकता, तुम कह रहे हो मैं साक्षी बनूं पर मैं कैसे चलूंगा। तो भक्त ने कहा क्या, अगर आप बोल सकते हो तो चल नहीं सकते। तो भगवान अपने आप को आचार्य विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं और हम भक्तों को मौका देते हैं क्या उनकी सेवा में जुड़ने के लिए। तो ये जो पांच महत्वपूर्ण अंग हैं, और अगले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने कहा इन पांच अंगों में अगर तुम एक भी ठीक पालन करोगे तो कृष्णा भक्ति की जागृति संभव है। तो हम सब जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, इन पांच अंगों का पालन करना चाहिए। तो पांच अंग क्या है, कौन से कौन बताएगा, सबसे पहला कौन सा था, अच्छा और दूसरा, तीसरा, चौथा, इसकी वजह आप दिल्ली बार से कह सकते हैं, और पांचवा, तो ये श्लोक आप सब याद करोगे। अगर आप इन पांच अंगों का पालन करो तो कृष्ण भक्ति में आप तेजी के साथ आगे बढ़ सकोगे। और जैसे भगवद गीता में कहा गया है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मन शोचती न कर सकती, जो व्यक्ति भक्ति में जुड़े हैं वह असली आनंद अनुभव कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षाशास्त्र के पहले श्लोक में जिसमें चैतन्य महाप्रभु हरि नाम के उच्चारण के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं एक और लाभ क्या है, आनंद बुद्धि वर्णना, भगवान के नामों के उच्चारण से आप असली आनंद अनुभव कर सकते हो। भौतिक कार्य के द्वारा जो आनंद अनुभव हो रहा है वो क्या है, नकली आनंद, यह है असली आनंद। तो आप सब जो यहाँ उपस्थित हो आप सबसे निवेदन है कि आप इन पांच अंगों का पालन करो और इन पांच अंगों की महिमा का प्रचार भी करो। प्रचार करना महत्वपूर्ण है या नहीं, भगवान ने इस विषय में गीता के 18वें अध्याय में क्या कहा है, सब भक्तों में कौन है सबसे प्रिय। कई बार भक्त पूछते हैं कोई शॉर्टकट है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो हम कहते हैं शॉर्टकट है क्या है, प्रचारक बनो। तो भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है, सब भक्तों में सबसे प्रिय वो है जो मेरा प्रचार करता है, उसी ज्यादा प्रिय ना कोई हुआ है ना। तो जैसे आप जानते हो हर साल गीता जयंती के उपलक्ष्य तीरथ की जयंती के उपलक्ष्य हमारे भक्त प्रयास करते हैं क्या अधिक से अधिक मात्रा में इन ग्रंथों को बांटने के लिए। क्यों? अगर आज आप किसी ग्रंथ में हैं दिव्य ज्ञान, अगर आज आप देख रहे हो हजारों भक्त हैं, जैसे आप जानते हो इस समय दिल्ली में 10 मंदिर हैं, जैसे आज का रविवार का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, वैसे ही कार्यक्रम नोएडा के मंदिर में हो रहा है, द्वारका में हो रहा है, पंजाबी बाग में शनिवार को हो रहा है, भादरगढ़ में हो रहा है, गाजियाबाद में हो रहा है, गाजियाबाद में आज बड़ा उत्सव हो रहा है, तो हर जगह। तो आप देख रहे हो कि आज हजारों भक्त हैं, वो एक समय था जब कोई नहीं था। तो भक्तों की संख्या सारे विश्व में कैसे बढ़ रही है इन ग्रंथों के माध्यम से। आज के श्लोक में सबसे ज्यादा महत्व था साधु संगत के ऊपर। तो ये साधु संगत हमें दो माध्यम से प्राप्त होती है, एक है भक्त साधु, दूसरा है ग्रंथ साधु। तो जब आप इन ग्रंथों को बांटते हो तो इन ग्रंथों के माध्यम से लोगों को प्रचार हो रहा है। इन ग्रंथों में है क्या? भगवान की वाणी और साथ में प्रभुपाद विशुद्ध भक्तों का तात्पर्य। तो हर साल हम प्रयास करते हैं गीता जयंती के उपलक्ष अधिक से अधिक मात्रा में इन ग्रंथों को बांटने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको क्या आदेश दिया है? जाए रखो जिसे भी तुम मिलो उसे क्या कहो? कृष्णा कहो। तो आप सबसे छोटा सा निवेदन है कि आप सब कृष्णा के उपदेश के आगे बढ़ाने के लिए आप सब इस सेवा में साथ दीजिए। पिछले साल आप में से किन किन भक्तों ने सहयोग दिया था मैराथन में? तो ऐसे लगता है अंदाजे से 50-60% लोगों ने पिछले साल साथ दिया था। तो जिन्होंने पिछले साल जो जुड़े थे इस सेवा में, ये साल भी जुड़ेंगे तब। पर मैंने ये भी देखा था कि कईयों ने हाथ नहीं उठाया। कम से कम आप लोग ब्राह्मण तो हो, ईमानदार, जिन्होंने सेवा की थी उन्होंने हाथ उठाया, और जिन्होंने सेवा नहीं की थी उन्होंने हाथ नहीं उठाया। तो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनके लिए निवेदन है, आप इस साल इस सेवा में जुड़ने को तैयार हो? अगर आप समाज को सुखी देखना चाहते हो तो एक ही है माध्यम, क्या है? लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दो। हमारे परम गुरु जी भक्ति सिद्धांत जी कहते थे, अगर संसार में किसी चीज की कमी है तो इस दिव्य ज्ञान की कमी है। और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा ये दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये है भगवान की इच्छा। भगवान ने कहा सब भक्त में सबसे प्रिय जो प्रचार कर रहा है, भगवान की इच्छा है कि यह प्रचार फैले। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब जुड़िए इस सेवा में। और जो भक्त जुड़ना चाहते हैं वो अपना नाम दे, वो मौन रूपा है, मौन रूपा या मधुसूदन या किसी भक्त के साथ जुड़ सकते हो। पर आप सब मेरे ख्याल से किसी न किसी भक्ति रक्षक के साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे निवेदन कि आप जुड़िए इस सेवा में। इस साल भी हमारा प्रयास है कि 400,000 ग्रंथों को बांटें। आप हैरान होंगे सुनकर कि कई बार ये जो ग्रंथ हैं लोग 20-20 साल नहीं पढ़ते। हमारे एक भक्त हैं बॉम्बे में, जिन्होंने भगवद गीता खरीदी थी 20 साल पहले, और 20 साल उन्होंने गीता को खोला भी नहीं। फिर 20 साल बाद उन्होंने एक दिन गीता खोला, पढ़ना शुरू किया, इतने प्रभावित हुए, भाई नाम का उच्चारण शुरू किया, मंदिर आना शुरू किया, राम दीक्षित भक्त भी मन गए। तो आप जब इन ग्रंथों को बांटते हो, कभी कभी हमारे मन में ये भाव आता है, जैसे कल मुझे कोई व्यक्ति, कोई सज्जन मिलने आए थे, तो मैं उनसे ग्रंथ के वितरण की महिमा की चर्चा कर रहा था। वो कह रहे थे वो लोग तो पढ़ते ही नहीं, तो बांटने का स्वामी जी क्या फायदा। तो हमारे मन में कई बार ये भाव आ जाता है, ये विचार, हाँ लोग तो पढ़ते ही नहीं। एक तरह से भगवान की इच्छा है कि हम प्रचार करें, तो माया की इच्छा कि आप प्रचार मत करो। तो माया कई बार हमें इस प्रकार के भाव देती है, आप प्रचार का क्या फायदा, कौन पढ़ेगा इन किताबों को। पर ये गलत है, लोग पढ़ते हैं। अगर आज विदेशों में भी, रूस में भी हजारों भक्त हैं, इनका इन पर प्रभाव पड़ा है इन ग्रंथों के माध्यम से। प्रभुपाद जी ने बड़ा संघर्ष करके इन ग्रंथों का अनुवाद किया, और प्रभुपाद जी ने कहा था कि भविष्य की 10,000 सालों तक लोग इन ग्रंथों को पढ़ेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, आप जुड़िए ग्रंथों के वितरण की सेवा में, ये बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है, और आप सब इस सेवा में उत्साह के साथ जुड़िए, और प्रभुपाद महानाचार्य की कृपा प्राप्त कीजिए। तो आप सब जुड़ोगे मैराथन में, सब कितनी आज्ञा थी। बाकी सिद्धांत जी, हमारे परम गुरु जी ने एक समय एक मृदंगा की तस्वीर खींची और प्रभुपाद जी से कहा, ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, ये है बृहद मृदंगा। आप एक साल में बांटोगे, आप दिल्ली में बांटोगे, पर इसका अध्ययन 10 साल बाद भी हो सकता है, और आप दिल्ली में बांट रहे हो तो कोई इसे पढ़ सकता है लंदन में भी, तो इसकी आवाज़ बहुत दूर तक पहुँचती है। तो सब जुड़िए इस सेवा में। हरे कृष्णा। मैं आपको दिखाना चाहता था एक नई गीता जो इसको हमने प्रकाशित की है। ये गीता नहीं है।